नई कविता में प्रकृति चित्रण के स्वरूप को दर्शाइए। नई कविता में प्रकृति एवं नवक्रांति के रूप में प्रकट की गई इस कथन की विवेचना कीजिए, या नई कविता एवं प्रकृति चित्रण पर एक निबंध लिखिए। नई कविता नवक्रांति की प्रतीक है, जहां शब्दों के आध्यात्मिक बम फूटते हैं। इन शब्दों का नव निरूपण नए कवि एक ऐसे खेत में पुष्पित एवं पल्लवित करते हैं, जहां की प्रकृति अपने सौंदर्य के साथ अपनी मारक शक्ति भी उपार्जित करती है। अतः नई कविता में प्रकृति वर्णन भी नव क्रांति के विकास में सहायक सिद्ध होती है। हिंदी काव्य साहित्य में प्रकृति वर्णन कोई नई विषय वस्तु नहीं है। आदिकाल हो या भक्तिकाल, रीतिकाल हो या आधुनिक काल, सभी काल के कवियों एवं महाकवियों ने प्रकृति सौंदर्य का चातुर्दिक वर्णन किया है। साहित्य प्रेमी जानते हैं, हिंदी साहित्य में बिहारी, घनानंद, मतिराम, सूर, कबीर, तुलसी प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा सबके सब प्रकृति के अनेकानेक स्वरूपों का वर्णन किया है। जायसी का बारहमासा कौन साहित्य प्रेमी भूल सकता है। प्रकृति वर्णन हिंदी साहित्य के कवियों का प्रिय विषय रहा है। फलतः नई कविता के कविवृंद भी प्रकृति शक्ति की ओर उन्मुख हुए। नई कविता के कवि वृंद प्रकृति को कविता के क्रांति के उत्प्रेरक के रूप में देखते हैं। प्रथम तार सप्तक के अग्रणी कवि श्री अज्ञे जी द्वारा भी प्रकृति के नवीनतम स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है। छायावाद काल में जहां प्रकृति प्रारूप रहस्यमयी से आवृत है, तो छायावाद उत्तर काल में प्रकृति का एक बदला हुआ स्वरूप ही परिलक्षित होता है। कालगी बाजरे की कविता के अंतर्गत अज्ञे जी लिखते हैं, दौलती कलगी अकेली बाजरे की, और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृत की घना हो सिमट आता है, और मैं एकांत होता हूँ, समर्पित शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है। नई कविता में प्रकृति का चित्रण एक विद्रोही स्वरूप ग्रहण किए हुए है, जैसे नदी के द्वीप शीर्षक के अंतर्गत अज्ञे जी नदी के धारा के क्रांतिकारी शक्ति को उपार्जित किया है। जैसे तुम बढ़ो प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे, यह स्रोत वाहिनी ही कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए। इसी प्रकार अज्ञे जी ने प्रकृति के आंतरिक शक्ति का वर्णन करते हुए लिखते हैं, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंगी गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। यहाँ ढलते हुए सूरज से भी अग्नि का पुंज निकलते देखा गया है। अतः उद्देश्य यह है कि प्रकृति चित्रण वस्तुत क्रांति का नया संदेश प्रदान करती है। श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपने कविता चंद्र गहना से लौटती बेर में चंद्रमा के एक नए स्वरूप को दर्शाते हैं। यह स्वरूप पूर्वकालिक सभी कवि वृंदों के भाव से पूर्णतः नए प्रतीपमान के रूप में प्रस्तुत हुआ है। श्री केदारनाथ सिंह ने दुपहरिया अज्ञे में दोपहर को दुखदायी एवं दर्दीला बताया। यह दोपहर दुख का प्रतीक है। इसके आते ही उदासी छा जाती है। जैसा कि वे लिखते हैं, झरने लगे नीम के पत्ते, बढ़ने लगी उदासी मन की, उड़ने लगी बुझे खेतों से झुर झुर सरसों की रंगीनी, धूसर धूप हुई मन पर ज्यों सुधियों की चादर अनबिनी, दिन के एक सुनसान पहर में रुक सी गई प्रगति जीवन की। इसी प्रकार श्री गिरिजा कुमार माथुर ने आज है केसर रंग वन कविता के अंतर्गत उन तथ्यों को दर्शाए हैं जहां वन में केसर उगे हुए हैं। यह एक प्रतीकात्मक कविता है। दुष्यंत कुमार का सांझ एक विदा दृश्य। कविता में संध्या काल की तुलना एक दुखी माँ से की गई है, जैसे एक दुखी से की है, जैसे एक दुखी माँ की तरह संध्या मैला सा आंचल पसारे सामने खड़ी है। पिता पर्वत काली सी चादर मुंह में लपेटे विदा का प्रसंग टाल जाते हैं। यह काव्य प्रकृति के मानवीय स्वभाव का वर्णन प्रस्तुत करता है। नरेश मेहता अपनी कविता शब्द फूल एवं वृक्ष बोध के अंतर्गत प्रकृति के एक नए स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। वे प्रकृति को उत्प्रेरक मानते हैं। जैसे सच आज का दिन यह वृक्ष की भांति जिया और प्रथम बार वनस्पतिक समर्पणता जगी। इस प्रकार नई कविता के कवि वृंद ने प्रकृति को एक क्रांति एवं प्रेरक का प्रतीक मानते हैं। नागार्जुन ने अपनी कविता बादल को घिरते देखा है के अंतर्गत कवि बादल के विभिन्न स्वरूपों का सुंदर और सौंदर्यमयी वर्णन को प्रस्तुत करता है। एक सौंदर्यमयी वर्णन निम्नलिखित है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला ऋण की मृदु किरणें थी, अलग बगल स्वर्णाभ शिखर थे। इसी सौंदर्यमयी वर्णन में कवि ने बादल के विभिन्न प्रभावों का दिग्दर्शन किया है। भवानी प्रसाद मिश्र की बूंद टपकी एक नभ से, विजय देवनारायण शाही का नए शिखरों से तथा हिमालय के आंसू नामक कविता में प्रकृति के विदीर्ण स्वरूप का वर्णन किया है। जैसे ओ दुखी हृदय है सत्य हिमालय सा तुमने दिल पाया था, है सत्य की तुमको भाल मिला था सूरज सा, है सत्य की छाती थी पठार सी अंतहीन, ओ आज सिर्फ भग्नावशेष। इसी प्रकार श्री शमशेर बहादुर सिंह अपनी कविता सागर तट के अंतर्गत सागर के अपरिमित आंतरिक शक्ति का वर्णन करते हैं। यह समंदर की पछाड़ तोड़ती है हाड़ तट का अति कठोर पठार, यह समंदर की पछाड़। प्रकृति वर्णन का स्वरूप हर युग में हुआ था। आदिकाल में काव्य का स्वरूप सौंदर्यमय था। आदिकाव्य में कवि वृंद प्रकृति को प्रेम का प्रतीक मानते थे। भक्ति काल में प्रकृति आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक रहा। रीति काल में प्रकृति का स्वरूप प्रेम प्रदीप्त करने का मुख्य साधन के रूप में प्रयुक्त किया गया। अंततः आधुनिक काल छायावाद के काल में प्रकृति रहस्य का प्रतीक बन गया, साथ ही आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत हुआ। उसके बाद प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद तथा छायावोत्तर नई कविता के अंतर्गत प्रकृति का प्रयोग एक क्रांतिकारी रूप में परिवर्तन का प्रतीक बनकर प्रस्तुत हुए। यज्ञ जी से लेकर धूमिल तक की कविताओं में जिस प्रकार से प्रकृति का वर्णन हुआ, वह निसंदेह रूप से प्रकृति का स्वरूप एक अंतरहीन शक्ति का प्रतीक बन गई। अतः नई कविता में प्रकृति का प्रयोग एक मात्र साधन के रूप में नहीं, अपितु जनजीवन में शक्ति एवं क्रांति की संचार प्रस्तुत करती है। दोस्तों, मेरा नाम रजनीश कुमार यादव है। बीए भाग 3 हिंदी आनर्स, बीए भाग तीन में सिलेबस में निम्नलिखित कवियों को पढ़ना है, जिसमें कि पहले कवि अज्ञेय हैं। प्रश्न, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जीवन परिचय देते हुए उनके काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अज्ञेय की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। दोनों प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य के पिता एवं पुत्र दोनों ही हैं। उनमें एक ओर छायावाद का प्रभाव तो दूसरी ओर प्रयोगवाद का, और दोनों के द्वंद्व से उत्पन्न हुई नई कविता के मूल रूप से परिणता है। अज्ञेय जी मन एवं मस्तिष्क दोनों को ही उद्वेलित करने में सफल हैं। उनके द्वारा रचित काव्य पाठ पाठक को सोचने एवं समझने के साथ साथ दोनों ही प्रकार से आधुनिकता के लिए प्रेरित करते हैं। वे पाश्चात्य कवियों के द्वंद्ववाद, परंपरावाद एवं आधुनिकता से प्रभावित काव्य रचनाकार हैं। विज्ञानवाद एवं स्पंदवाद दोनों को सम्यक रूप से संवर्धित किया है। आचार्य अज्ञेय जी आधुनिक काव्य साहित्य के युग रहे। 1919 में जन्म हुआ और वे 20वीं शताब्दी के आदि से अंत के होने वाले अनेकानेक त्वरित परिवर्तनों को बखूबी अध्ययन किए। प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध, 1942 का स्वतंत्र आंदोलन, भारत की आज़ादी, स्वतंत्रता के बाद उसकी विविधताएं, अंग्रेजी की गुलामी, सभी घटनाक्रम भली भांति देखा, परखा और अनुभूत किया। फलतः उनकी काव्य यात्रा छायावाद से चलकर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, तीनों का सुंदर सामंजस्य है। अज्ञेय जी जनमानस के असंतोष, आकुलता, आक्रोश, लघुता के आभास, जीवन के प्रति आस्था, संतरास, अस्तित्व बोध, नवीन के प्रति सहज आकर्षण, यौन कुंठा और समस्त संवेदनात्मक अनुभूतियों को सशक्त वाणी देने का सफल प्रयास किए हैं। श्री अज्ञेय जी द्वारा रचित भग्न दूत, चिंता इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, इंद्रधनुष, आगन के पार द्वार आदि प्रसिद्ध अमर काव्य हैं। जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि आचार्य अज्ञेय जी छायावाद के प्रारंभिक काल से काफी प्रभावित थे। भग्न दूत एवं चिंता नामक काव्य छायावादी गुणों से उत्प्रोत हैं। उदाहरण के लिए अज्ञेय की लक्षण नामक कविता का अंश प्रस्तुत है, जिसमें छायावादी प्रभाव है। आंसू से आंखें भरने पर और चमकने लगती हैं, सुरभित हो उठता समीर जब कलियां झड़ने लगती हैं। अज्ञेय की गणना प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों में होती है। यह आलोचकों की एक प्रकार की धांधली ही है कि अज्ञेय जी को एक प्रबुद्ध कलाकार से अधिक प्रयोगवाद के प्रवर्तक और पोषक के रूप में मानते हैं, जबकि अज्ञेय ने स्वयं को इस नाम को भ्रामक माना है। नई कविता की तीन प्रमुख विशेषताएं, स्वचेतना, आधुनिकता तथा बौद्धिकता, अज्ञेय की यह द्वीप अकेला नामक कविता में देखी जा सकती है। यह द्वीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो, यह जन जन है गाता, गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पंडुबा, ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा, यह समिधा ऐसी आघटिली बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह गर्व भरा मतदाता पर इसको भी पंक्ति दे दो। अज्ञेय जी ने अपने काव्य के नए चरण में व्यक्ति के समाजीकरण पर बल दिया है। समाजीकरण को इसी भावना से प्रेरित होकर वे दुख की घनीभूति में भी व्यक्ति विकास का संदेश सुनाते हैं। दुख सबको मांझता है। नई कविता क्षण के महत्व को स्वीकारती अज्ञेय भी लिखते हैं, आज के अभिव्यक्ति अद्वितीय, इस क्षण को हम पूरा जी लें, पी लें, आत्मसात कर लें। नई कविता में आस्था के गहन स्वर मुखरित हुए हैं। यह रंग भी अज्ञेय के काव्य में मिलता है। मैं आस्था हूँ तो मैं निरंतर उठने रहने की शक्ति हूँ। अज्ञेय का मत है कि नवीन विषय वस्तु को अभिव्यक्त के लिए नए शिल्प विधान की आवश्यकता है, इसलिए वे नवीन उपमानों, बिंबों एवं प्रतीकों के उपयोग पर बल देते हैं। जीवन की जटिलता का चित्रण करने के लिए उन्होंने बौद्धिक प्रतीक अपनाए हैं, तो दमित काम भावना की अभिव्यक्ति के लिए यौन प्रतीकों का आश्रय लिया है। उनके अधिकांश प्रतीक प्रकृति के क्षेत्र में गृहित हैं। निश्चय ही अज्ञेय कविता का चिंतन पक्ष पर्याप्त समृद्ध है। इसी कारण कुछ आलोचकों ने उनकी कविता पर दुरूह एवं अस्पष्ट होने का आरोप लगाया है। वस्तुतः उनका संपूर्ण काव्य दुर्बोध नहीं। जहाँ कहीं वे दर्शन और चिंतन की गहन विधियों में कविता के साथ आँख मिचौली खेलने लगते हैं, वहीं उनकी कविता अज्ञेय हो जाती है। निसंदेह अज्ञेय आज के हिंदी कवियों में सर्वाधिक चर्चित कवि हैं। पहली कविता का शीर्षक है कलगी बाजरे की। प्रश्न, कलगी बाजरे की का मूल भाव सारांश तथा विशेषता बताइए। मूल भाव, कलगी बाजरे की कविता आचार्य अज्ञेय जी की छायावादी प्रकृति की प्रतिनिधि काव्य है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपना समर्पण प्रकृति के प्रति प्रस्तुत किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ की भांति, ओ डू इम्पारलेटी की भांति, जहां कवि इसलिए दुखी था कि वह प्रकृति सौंदर्य से दूर होता जा रहा है और अंत में उसे शांति मिलती है, कि उसका समर्पण भाव आज भी कम नहीं हो पाया है। उसी प्रकार आचार्य अज्ञेय जी को कलगी बाजरे की आह्लादित करता रहा, किंतु उन्हें दुख होता है कि वह अनुपम प्रतीत आज भी उससे नहीं पा रहे जो कभी पाते थे। प्रकृति का सौंदर्य आज उनसे दूर होता जा रहा है, किंतु अंत में उन्हीं संतुष्टि प्राप्त होती है कि आज भी प्रकृति के सौंदर्य के प्रति वे समर्पित हैं। छायावादी कवियों की भांति सुकवि अज्ञेय जी कलगी बाजरे की काव्य में प्रकृति प्रेम, प्रकृति रहस्य एवं मन स्थिति का वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है, और एक आनंद एवं उत्साह है तो दूसरी ओर दुख एवं भय, इन दोनों ही द्वंद्वों के मध्य कवि हृदय अज्ञेय जी प्रकृति प्रेम एवं आनंद को चिरावस्था की भांति ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं और अंत में कह पड़ते हैं, और मैं एकांत होता हूँ, समर्पित शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं। कलगी बाजरे की का शिल्प कला विधान आधुनिक एवं मुक्तक छंद के रूप में भाषा मिलू जिली हिंदुस्तानी है। कहीं क्लिष्ट हिंदी है तो कहीं आम बोलचाल की शैली विचारात्मक है, रूप अलंकार का प्रयोग है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग है, उत्प्रेक्षा का संपुट है। कलगी बाजरे की सारांश, आचार्य अज्ञेय बाजरे की कलगी से प्रभावित होते हैं, उन्हें उसमें अनुपम सौंदर्य की अनुभूति होती है। संध्या काल एवं शरद ऋतु के भोर के समय चंपा की कली देखते ही उनका हृदय आनंद से भर जाता है, किंतु अब उनका मन उस आनंद को छू नहीं पाता जिसे वे कभी प्राप्त करते रहे। वे प्रश्न रखते हैं कि क्या यह कभी उपमान अंधकार से आवृत हो चुका है, या आंतरिक आनंद प्रदान करने वाली देव शक्ति ही विलुप्त हो गई है। उसकी तुलना कभी वर्तमान के घिसने से चमक से घट जाती है। उसी कलगी बाजरे की अथवा चंपा की कली का वह मुलम्मा घट गई, किंतु क्या उसे पहचानना भी मुश्किल है। कभी कहना चाहता है कि मुलम्मा हटने से वस्तु की पहचान नहीं मिटती। जब कभी भी इन वस्तुओं को देखता हूँ तो मन स्वतः गीत गाने लगता है। इसी शक्ति के शब्दों में पिरोकर प्रस्तुत करता हूँ। यह समर्पण मेरे मन के प्रति प्रेम को प्रस्तुत करने में आज भी समर्थ है।